ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निर्वाचन अधिकृत कार्यालय द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जारी किया आचार संहिता, जो कल से चैत की 5 गति तक रहेगी लागू। राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही मंत्रिपरिषद को पूर्णता मिलेगा। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का कथन। और अमेरिका के कई राज्य तूफान से प्रभावित, मौसम की मार से 1 की मौत, 55 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय ने उम्मीदवारों की अंतिम नामावली प्रकाशित की है। उम्मीदवारी वापस लेने के लिए आज दोपहर 4 बजे तक का समय तय किया गया था, लेकिन किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस न लेने के कारण अंततः नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल और नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र नेमवांग के नाम प्रकाशित किए गए। ये जानकारी सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता शर्मा ने दी। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल से चैत 5 गति तक के लिए निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी करने का निर्णय किया। सरकार ने जनयुद्ध और जन आंदोलन के दौरान विभिन्न तिथियों पर शहादत हुए लोगों को शहीद घोषणा करते हुए राजपत्र में सूची प्रकाशित करने का निर्णय किया है। फागुन 15 गति को हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व विभिन्न तिथियों में शहीद घोषित किए जा चुके, लेकिन नेपाल राजपत्र में प्रकाशित होने को बाकी रहे शहीदों की नामावली प्रकाशित करने का भी निर्णय किया गया है। संचार मंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्रालय के आंकड़ों और सूची के अनुसार शेष शहीदों के नाम राजपत्र में प्रकाशित न होने से उन्हें शहीदों की मान्यता नहीं मिल पाई है, इसलिए सरकार द्वारा शहीद घोषित किए जा चुके लेकिन राजपत्र में प्रकाशित होने को बाकी रहे सभी शहीदों का नाम प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है। मंत्री शर्मा ने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों के डेटा और सूचना प्रविधि प्रणाली को एक एकीकृत डेटा केंद्र में प्रतिबंधित किया जाएगा। इसी तरह सरकार गठन और संसद में विश्वास मत लेने के संबंध में मीडिया कर्मियों की जिज्ञासा का जवाब देते हुए संचार मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार संविधान के अनुसार समय सीमा के भीतर विश्वास मत लेगी प्रावधानों, और जैसा कि सरकार वर्तमान में राष्ट्रपति चुनाव पर केंद्रित है, उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने एकीकृत वेबसाइट प्रबंधन प्रणाली और वेब निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। आज मंत्रालय में वेबसाइट प्रबंधन प्रणाली और वेब निगरानी प्रणाली का शुभारंभ करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि ऐसी वेबसाइटों के उपयोग से लोगों तक आसानी से जानकारी पहुंच सकेगी। मंत्री शर्मा ने कहा कि एकीकृत वेबसाइट प्रबंधन प्रणाली लागू होने से सरकारी कार्यालयों की वेबसाइटों में एकरूपता आएगी और वेबसाइट निर्माण की लागत भी कम आएगी। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 8 अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड को सौंपी। प्रधानमंत्री प्रचंड की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने 8 अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री प्रचंड को सौंपी है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य के अनुसार मौजूदा मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों द्वारा सामूहिक त्यागपत्र सौंपने के बाद खाली रहे मंत्रालयों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को दी गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि खेल क्षेत्र के गुणात्मक विकास के लिए खेल क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में वृद्धि की जानी चाहिए। आज ललितपुर के चैसल में रंगशाला का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि पूर्वाधार तथा खेलकूद कार्यक्रमों के लिए वर्तमान बजट में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में बजट का प्रबंधन किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि ने कहा कि संविधान और प्राप्त उपलब्धियों की रक्षा करने के लिए परिवर्तन पक्षधर दलों के बीच सहमति अपरिहार्य है। आज जनकपुर धाम में आयोजित नेपाल प्रेस यूनियन मध्य प्रदेश कार्य समिति के पदस्थापन कार्यक्रम में नेता निधि ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सदन के 10 दल राष्ट्रपति चयन के विषय पर अपनी सहमति जताएगी। जनमत पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत सी के रावत ने कहा कि हमारी पार्टी सरकार से बाहर नहीं जाएगी। पार्टी के भातृ संगठन विद्यार्थी जनमत संघ की आज कोटेश्वर में हुई केंद्रीय बैठक तथा प्रशिक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल मौजूदा सरकार से बाहर होने की पार्टी के पास कोई वजह नहीं है। अध्यक्ष रावत ने यह भी कहा कि सरकार में शामिल पार्टियां भले ही परिवर्तित हो जाएं, लेकिन मौजूदा नेकपा माओवादी केंद्र नेतृत्व की सरकार नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल को हमारी पार्टी का समर्थन रहेगा। अमेरिका के अलग अलग इलाके इस समय मौसम के कड़े रुख के चलते भारी तबाही और अव्यवस्था से गुजर रहे हैं। यहां दक्षिणी मैदानी इलाकों और मध्य पश्चिमी इलाकों में बवंडर और तेज हवाओं के बीच देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी हिमपात होने की संभावना है। मौसम के इस प्रतिकूल रुख से ओक्लाहोमा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं मिशिगन में कई लोग पिछले सप्ताह के बर्फीले तूफान के बाद लगातार छठे दिन बिना बिजली के रह रहे हैं। कैलिफोर्निया में राष्ट्रीय मौसम सेवा का कहना है कि पूरे राज्य में बुधवार तक सर्दियों में चलने वाले तूफान जारी रहेंगे। बता दें कि तूफान बवंडर से जान माल का सर्वाधिक नुकसान आके लाहोमा शहर में हुआ है। यहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। साथ ही 55 लोगों को चोटें आई हैं। इसके अलावा 20 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 4 घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं। सड़कों पर यातायात बंद कर दिया गया है। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में कैलिफोर्निया और नेवादा में भारी बारिश और हिमपात के साथ बर्फीले तूफानों की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार यहां ऊपरी इलाकों में अगले 2 दिनों में 6 फीट बर्फ पड़ सकती है और आंधी तूफान आ सकते हैं। खराब मौसम की आशंका वाले नेवादा के कई क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। कैलिफोर्निया में इससे पहले पिछले सप्ताह ही पहले भी बेहद तेज तूफान आया था। कैलिफोर्निया में भी कई सरकारी सेवाएं और सड़क मार्ग एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। लॉस एंजेलिस में भी घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अत्यधिक ठंड की चेतावनी जारी की गई है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन अधिकृत कार्यालय द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जारी की आचार संहिता, जो कल से चैत की 5 गते तक रहेगी लागू। राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही मंत्रिपरिषद को पूर्णता मिलेगा। सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का कथन। और अमेरिका के कई राज्य तूफान से प्रभावित, मौसम की मार से एक व्यक्ति की मौत, 55 लोग घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।